दीवा अपने कुलीग डॉक्टर्स के साथ क्लब में पार्टी कर रही थी। वहां ज्यादा ड्रिंक करने के बाद दो लड़के उसके साथ बदतमीजी करने लगे। आर्यांश वहीं पर मौजूद था। उसने दीवा को उनसे बचाया और वहां से एक होटल में ले आया था। दीवा इस वक्त आर्यांश के साथ होटल के प्रेसिडेंशियल सुइट में थी। आर्यांश ने दीवा के साथ रात बिताने की शर्त रखी थी, बदले में वो उसके पापा के सारे लोन चुकाने वाला था। अब फैसला दीवा पर था कि वो आर्यांश के आगे झुकती है या वहां से वापस चली जाती है। दीवा उलझन में थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने आर्यांश की तरफ देखा और कहा, तुम ये क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पास काफी सारे ऑप्शन हैं, फिर तुम मेरे ही पीछे क्यों पड़े हो? तो तुम्हें इस बात से दिक्कत है कि मेरे पास काफी सारे ऑप्शन हैं? सो कोई जल रहा है? आर्यांश ने उसे परेशान करने के लिए कहा। दीवा उसकी तरफ घूर कर देखने लगी कि तभी आर्यांश ने उसे पकड़कर बेड पर बैठा दिया था। ऐसा लग रहा था मानो आर्यांश हर हाल में आज दीवा को मनाने वाला था। दीवा गुस्से में खड़ी हुई और चिढ़ते हुए बोली, मैं क्यों जलूंगी? तुम्हें जिसके साथ रात बितानी है बिताओ, पर तुम इस तरह मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा, मैंने तुम्हारे सामने एक शर्त रखी है। अब उसे एक्सेप्ट करना या ना करना तुम पर डिपेंड करता है, आर्यांश बेपरवाही से बोला। और मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर नहीं है, समझे तुम? अब जाने दो मुझे यहाँ से, आगे से मेरे सामने भी मत आना। दीवा गुस्से में उस पर चिल्लाई। उसकी आंखें नम होने लगीं। उसे अपने सभी दुख याद आने लगे। आर्यांश की शर्त को नामंजूर करने का मतलब वो अच्छे से समझती थी। कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आने वाला था, पर फिर भी उसे आर्यांश के साथ एक रात का समझौता करना सही नहीं लगा। वहीं दीवा के इनकार करते ही आर्यांश के चेहरे के भाव गहरे होने लगे। वो उसके साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता था, ना ही पहले उसने किसी के साथ ऐसा किया था। पर दूसरा सच ये भी था, आज रात के लिए उसे दीवा चाहिए थी, वो भी उसके कंसेंट के साथ। दीवा उठकर वहां से जाने लगी। जल्दबाजी और गुस्से में उसका पैर नीचे रखे बड़े और भारी से वासे जा टकराया। दीवा लड़खड़ा कर नीचे गिरती, उससे पहले आर्यांश ने उसे अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया था। दीवा की आंखों में आंसू थे। वो सिसकते हुए बोली, मैं थक गई हूँ, ये सब कब खत्म होगा? मुझे नहीं पता, आर्यांश ने धीमी शांत आवाज में कहा। आर्यांश ने एक झटके से दीवा को अपने बिल्कुल करीब कर लिया था। उनके होठों के बीच बस ना के बराबर फासला रह गया था। दीवा की आंखों से आंसू का कतरा बह गया तो आर्यांश ने उसे अपने होठों से थाम लिया था। अचानक दीवा के होठ खुद ही आर्यांश के होठों से जा मिले थे। अभी भी वो पूरी तरह होश में नहीं थी और अपने दुखों में इस कदर मदहोश हो चुकी थी कि उसे ये तक एहसास नहीं था कि थोड़ी देर पहले वो आर्यांश को खुद से दूर रहने को बोल रही थी और अब खुद ही उसके करीब चली गई थी। आर्यांश ने दीवा को कसकर अपनी बाहों में थाम लिया था और वो उसे काफी पेशेंटली किस कर रहा था। अगले ही पल वो दोनों बेड पर थे। आर्यांश ने उसे लिटाया और अपनी जैकेट उतारने लगा। उसने दीवा के चेहरे की तरफ देखा जो गहरी सांस ले रही थी। लगता है मुझसे ज्यादा तुम्हें मेरे करीब आने की जल्दी लगी है। मैं बेवजह तुम्हारे सामने कोई शर्त रख रहा था, जबकि तुम तो इसके लिए पहले से तैयार थीं, दीवा गोयनका, आर्यांश बोला, जिस पर दीवा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। दीवा उठने की कोशिश करने लगी, तभी आर्यांश ने उसे हल्का सा धकेल कर वापस लेटा दिया था। अगले ही पल उसके हाथ तेजी से दीवा की शर्ट के बटन खोल रहे थे। जल्दबाजी में उसने कुछ बटन तोड़ भी दिए थे। फिर उसने देखा दीवा के बाईं तरफ ब्रेस्ट के नीचे एक बड़ा सा सर्जरी का निशान था, जिसे देखकर आर्यांश ने अपनी आंखें कसकर बंद कर दी। उसके चेहरे पर दर्द उभर आया था। आर्यांश ने मन ही मन कहा, भले ही तुम बच गई थी, लेकिन दर्द तो तुमने भी सहा होगा। दीवा कुछ कहती उससे पहले आर्यांश फिर से उसके ऊपर आ गया था और उसने उसके होठों को कैप्चर कर लिया। ये दीवा का दुख था, नशा या फिर कुछ और, पर वो चाहकर भी आर्यांश को रिजिस्ट नहीं कर पा रही थी और एक बार फिर उन दोनों के बीच वही हुआ जिसके लिए दीवा होश में रहकर कभी आर्यांश को हाँ नहीं कहती। अगली सुबह आर्यांश दीवा को अपनी बाहों में जकड़े हुए सो रहा था। वो उसके चेहरे को काफी गौर से देख रहा था। दीवा गहरी नींद में थी। आर्यांश ने घड़ी में टाइम देखा तो सुबह के लगभग 8 बज रहे थे। वो 2 घंटे पहले ही उठ चुका था, लेकिन दीवा अभी भी गहरी नींद में थी। उसका मन नहीं कर रहा था कि वो दीवा को अकेले छोड़कर वहां से जाए। आर्यांश उसके चेहरे में खोया हुआ था, तभी दीवा उसकी बाहों में कसमसाने लगी। आखिर आर्यांश ने उसे इतना कसकर जो पकड़ रखा था। दीवा की आंख खुली तो आर्यांश उसके चेहरे के ऊपर झुका हुआ था और उसके चेहरे पर एक ईविल स्माइल थी। तुम ये क्या कर रहे हो? दीवा ने हड़बड़ाकर पूछा और उठने की कोशिश करने लगी। दीवा ने अपने सर को पकड़ा और कल रात की बातों के बारे में सोचने लगी। उसे सब तुरंत ही याद आ गया था। दीवा की आंखों से आंसू का कतरा बह गया था। एक बार फिर नशे में वो आर्यांश के साथ उसके क्लोज आई थी और वो इतनी बेवकूफ थी कि इस बार थोड़ा बहुत होश होने के बाद भी उसे खुद से दूर नहीं कर पाई। दीवा ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर दिया था। वो आर्यांश का चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी। तभी आर्यांश ने उसका चेहरा पकड़कर अपनी तरफ किया और हल्का मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग। दीवा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और फिर से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। इसकी हरकतें आर्यांश को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं दिला रही थी। क्या हुआ, अब तुम्हें मुझसे नफरत हो रही है?
आर्यांश ने सिर हिलाकर पूछा। फिर वो कुछ पल रुककर इसी मुस्कुराहट के साथ बोला, वैसे कल की रात कमाल की थी। ऐसा नहीं था कि हम पहली बार क्लोज आए थे, पर कल की बात ही अलग थी। तुम नशे में जरूर थी, लेकिन ड्रग्स के नशे में तुम्हें बिल्कुल होश नहीं था, और शराब के नशे में तुम मेरा पूरा साथ। आर्यांश क्या कहना चाह रहा था दीवा समझ गई। उसकी बात पूरी होने से पहले ही वो बीच में चिल्लाकर बोली, अपना मुंह बंद रखो। ठीक है, जैसा तुम चाहो, आर्यांश बोला और दीवा के ऊपर से खड़ा हो गया। उसने अभी भी कपड़े नहीं पहन रखे थे। दीवा भी उठकर बैठ गई थी और उसने खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लिया। दीवा खुद में सिमटी हुई थी, इस लम्हे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। आर्यांश ने एक नज़र दीवा की तरफ देखा और फिर बोला, वैसे तो तुमने कल रात मेरी शर्त को ठुकरा दिया था और खुद ही अपनी मर्जी से मेरे क्लोज आई थी, लेकिन फिर भी बताओ तुम क्या चाहती हो। दीवा को उस पर गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी मुट्ठी बांध ली थी। वो गुस्से में गहरी सांस ले रही थी। उसे शांत करने के लिए आर्यांश ने दीवा के कंधे पर अपना हाथ रखा, लेकिन दीवा ने उसे झटक कर खुद से दूर कर दिया था। दीवा ने आर्यांश की तरफ देखा और फिर कांपती धीमी आवाज में कहा, मेरे पापा। दीवा ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। डोंट वरी, वो बिल्कुल ठीक है, आर्यांश ने हल्की दिलकश मुस्कुराहट के साथ कहा। आर्यांश के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर दीवा की घबराहट थोड़ी कम हो गई। वो जैसा भी था, लेकिन उसने अपना वादा निभाया था। दीवा चुपचाप बैठी थी तो आर्यांश ने कहा, चलो अब जल्दी से उठकर कपड़े पहन लो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। दीवा ने फिर से उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपना चेहरा ब्लैंकेट में छुपा लिया था। वो आर्यांश को फेस भी नहीं करना चाहती थी। शायद इसकी एक वजह यह भी थी कि रात को मना करने के बाद भी कहीं ना कहीं आर्यांश के साथ उसने रात बिताई थी और उसके बदले में अपने पापा को बाहर निकालने की शर्त रख दी थी। दीवा को जिद करते देखकर आर्यांश ने हल्के सख्ती से कहा, तुम यहाँ से नहीं उठने वाली हो।
दीवा अभी भी चुप थी। वो मन ही मन बड़बड़ा रही थी, इसे इतना भी समझ नहीं आता क्या, मुझे इसका फेस नहीं करना है, ये खुद ही चला क्यों नहीं जाता यहाँ से। दीवा आर्यांश पर गुस्सा उतार रही थी। तभी आर्यांश तेज और सख्त आवाज में बोला, अगर अगले एक मिनट में तुम बाहर नहीं निकली तो आई बेट यू तुम फिर से मेरे नीचे मिलोगी एंड आई विल रिपीट एवरीथिंग। आर्यांश के धमकी देते ही दीवा जल्दी से ब्लैंकेट से बाहर निकली। उसके लंबे बाल उसके कॉलरबोन पर बिखरे हुए थे और वो अपनी ग्रे आईज से उसे घूर रही थी। आर्यांश दीवा की तरफ ईविल स्माइल के साथ देख रहा था। उसने मन ही मन बड़बड़ाकर कहा, अरे वाह, मेरी एक छोटी सी धमकी से इतना असर हुआ, कितनी भोली हो तुम दीवा गोयंका। दीवा ने गहरी सांस ली और अपनी शर्ट की तरफ इशारा करके कहा, मुझे दूसरे कपड़े चाहिए, शायद ये फट चुकी है। रात को जल्दबाजी में आर्यांश ने ध्यान नहीं दिया था, पर दीवा को अनड्रेस करते हुए उसने उसकी शर्ट को डैमेज कर दिया था। आर्यांश ने पास की ड्रोर से एक ड्रेस निकाल कर देते हुए कहा, इसे पहन लो। ठीक है, लेकिन तुम बाथरूम में जाओ, उसके बाद मैं तैयार हो जाऊंगी, दीवा ने अपनी शर्त रखते हुए कहा। कपड़े तो आर्यांश ने भी नहीं पहने थे, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने ब्लैंकेट साइड किया और वैसे ही उठकर बाथरूम में जाने लगा, तो वहीं दीवा ने अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर ली। कुछ ही देर में आर्यांश चेंज करके बाहर आ चुका था। उसने ब्लैक सूट पहना था, तो वहीं दीवा भी अब तैयार थी। दीवा ने पिंक कलर की वन पीस ड्रेस पहनी हुई थी। ये दीवा का फेवरेट कलर था, जो आर्यांश को पता था। दीवा ने एक नज़र आर्यांश की तरफ देखा। वो हैंडसम लग रहा था और मासूम भी। दीवा ने आगे कुछ नहीं कहा और वो दरवाजे की तरफ जाने लगी। उसके पीछे आर्यांश भी आया। जैसे ही वो पार्किंग में पहुंचे, दीवा हैरान रह गई। रात को वो दूसरी गाड़ी में वहां आई थी, लेकिन अब वहां पर एक ब्लैक कलर की लैम्बोर्गिनी खड़ी हुई थी। तुम कितना शो ऑफ करते हो, अचानक दीवा के मुंह से निकला। कोई बात नहीं, मेरे साथ रहते हुए तुम भी मेरी तरह शो ऑफ करना सीख जाओगी, आर्यांश ने जवाब दिया। इन योर ड्रीम्स, ना तो मैं तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ और ना ही तुम्हारे जैसे बनूंगी, आर्यांश कपूर, दीवा ने गुस्से में जवाब दिया और गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। वहीं आर्यांश उसकी तरफ खोई हुई निगाहों से देख रहा था। एक पल के लिए आर्यांश को दीवा में किसी की परछाई दिखाई दी, वही मासूमियत, वही बचकाना अंदाज, उतनी ही खूबसूरत और मासूम। क्या लगता है आर्यांश दीवा से कैसे जुड़ा हुआ है? एक और चैप्टर जल्द ही आएगा और प्लीज़ आप पढ़कर समीक्षा किया करो।